चार्थ अब मुझे इस बात पे करना है कि कितने तरह के कर्म हैं जो कि मुझे मेरे जीवन को निर्मित करने में अपना पार्ट अदा करते हैं, उनका अपना कितना हाथ है मेरे इस जीवन में। तो कुछ कर्म ऐसे हैं जो कि मेरे शरीर के आकार प्रकार और रंग रूप का निर्धारण करते हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जो मुझे ऊंचे और नीचे होने का भाव मेरे अंदर उत्पन्न करने में कारण बनते हैं कि मैं ऊंचा हूं या कि मैं नीचा हूं। इसके लिए भी मेरे अंदर कुछ कर्म हैं जो निमित्त बनते हैं। कुछ कर्म हैं जो मुझे शरीर में कितने समय तक किस शरीर में रुके रहना है इस बात को निर्धारित करने में कारण बनते हैं, ऐसे भी कर्म हैं। कुछ कर्म हैं जो मेरी चेतना को, मेरी श्रद्धा को, मेरे आचरण को विकृत करने वाले हैं, उसमें कारण बनते हैं, वो भी कर्म मेरे भी। 8 प्रकार के कर्म हैं और कुछ कर्म और हैं जानते हैं। आचार्य भगवंतों ने इन्हें नाम दिए हैं, ढकने वाला, मेरी अज्ञानता को बढ़ाने वाला ज्ञानावरणी कर्म है, मेरे नदी को कम और ज्यादा बनाने वाला, मेरे अपने सामान्य प्रतिभास को कमला दर्शनावरणी कर्म है, मेरे सुख दुख में निमित्त बनने वाला वेदनी कर्म है, मेरी चेतना को, मेरी श्रद्धा को, मेरे आचरण को विकृत कर देने वाला मोहनी कर्म है, मुझे एक शरीर में निश्चित समय के लिए रोके रखने वाला मेरा आयु कर्म है, मुझे ऊंचे और नीचे कुल का भान कराने में वाला गोत्र कर्म है, मेरे शरीर प्रकार प्रकार रूप रंग का निर्धारण करने वाला नाम कर्म है, और मेरे दान लाभ भोग उपभोग और मेरी सामर्थ्य में बाधा डालने वाला अंतराय कर्म है। ये कर्म मेरे अपने जीवन में मैं स्वयं स्थित करता हूं अपने परिणामों से। ये बहुत फिजिकल नहीं है, बहुत भौतिक नहीं है, ये हमारे साथ इंटरमिगल करते हैं, हमारे साथ ट्रैप हो जाते हैं, वो बहुत भौतिक मालूम पड़ते हैं, लेकिन ये बहुत मानसिक, बहुत भावनात्मक कर्म है जिनमें कि मेरा अपना पुरुषार्थ काम आता है। मैंने ऐसा पहले जीवन में क्या पुरुषार्थ करा जिससे कि मुझे वर्तमान का जीवन ला, इस पर विचार जरूर करना है। कर्म सिद्धांत पढ़ने वाले को और ज्यादा विचार न करे तो इतना तो जरूर करना चाहिए कि मेरी मौजूदा हालत की जिम्मेदारी किसकी, मेरी मौजूदा स्थिति के लिए मेरी कौन सी दशा जिम्मेदार रही होगी पहले, और आज वर्तमान की भाव दशा कैसी है जिससे कि मैं अपने आगामी का निर्धारण अपने हाथ से करूंगा। इतना आगे कर्म सिद्धांत पढ़ने के लिए और उसका क्लू है, अगर इतनी बात हमारे ध्यान में रही आए तो समझिएगा कि वाकई में हमने इन कर्मों को ठीक ठीक समझ लिया है, हमारे कर्म के बारे में अज्ञानता हट गई है। वरना तो इस संसार में कर्मों से पार पाने वाले बहुत विरले ही हैं, कर्मों से पार पा पाना इतना आसान नहीं है, हमारे ही अपने कर्मों से हम पार नहीं पा पाते। तो देखें एक एक करके अपन देखेंगे कि कौन सी भाव दशा है जो मेरे इस जीवन के लिए कारण बनी हुई है, मेरे ज्ञान में कमी है, मेरा अज्ञान बहुत है, कोई तो बात होगी, मेरे पास किताब नहीं होगी शायद इसलिए मेरा ज्ञान कम है, मुझे कोई पढ़ाने वाला ठीक मिला इसलिए मेरा ज्ञान कम है, मुझे जरा अच्छा स्कूल नहीं मिला है इसलिए मेरा ज्ञान कम है, कुछ फैसिलिटीज नहीं मिली है इसलिए मेरा ज्ञान कम है, बहुत से कारणों पर हमारा ध्यान जाता है। सो ठीक है भैया, किसी के पास पुस्तक नहीं है, पर कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पुस्तक नहीं होती पर फिर भी ज्ञान बहुत होता, कई लोग ऐसे हैं जिनको कि ठीक ठीक गुरु नहीं मिला है, द्रोणाचार्य नहीं मिल पाए थे एकलव्य को लेकिन फिर भी धनुर्विद्या तो उसने सीख ली थी, तब फिर मैं कैसे मानूं कि गुरु के नहीं मिलने पर मुझे ज्ञान नहीं होगा या कि किताब के नहीं मिलने पर मुझे ज्ञान नहीं हुआ है, और या कि मुझे कोई अच्छा स्कूल नहीं मिला पढ़ने के लिए, मुझे बहुत छोटे स्कूल में पढ़ रहा हूं मैं। आज तो सब यही सोचते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ूंगा, बड़े कॉलेज में पढ़ूंगा, कोई बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ूंगा तो बहुत ज्ञानवान हो जाऊंगा, सोच तो हमारा ये है, लेकिन ये सारी चीजें बहुत बाहरी हैं, मेरे ज्ञान और अज्ञान को निर्धारित करने वाली ये चीजें नहीं है, ये बहुत बाह्य है, अगर है भी तो मेरे भीतर मेरे अपने परिणाम मेरे ज्ञान और अज्ञान को निर्धारित करते हैं कि कितना मेरा ज्ञान का क्षयोपशम होगा और कितना मेरा अज्ञान, ये दोनों चीजें कौन निर्धारित करता, मेरे अपने परिणाम निर्धारित करते हैं। आचार्य भगवंतों ने एक सूत्र लिखा, तत्तदोष निन्दो मात्सर्य अंतराया साधनोप घाता ज्ञान दर्शनावरण योग, ज्ञान पर आवरण और दर्शन पर आवरण लाने वाले उसको कम करने वाले ये जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म है जो हमारे साथ हम खुद ट्रैप कर लेते हैं, हम खुद उनको अटैच कर लेते हैं, उनके पीछे भाव दशा क्या है। प्रदोष किसी के ज्ञान की कथा करते समय, जैसे कि ज्ञान की चर्चा चल रही है, बैठे बैठे सुन तो रहे हैं लेकिन भीतर ही भीतर ईर्ष्या का भाव है। कोई ज्ञान की अच्छी बातें कर रहा है और उसकी बातें सुन भी रहे हैं लेकिन प्रशंसा का तो एक शब्द मुंह से नहीं है, न मन में प्रशंसा का भाव है बल्कि उल्टा मन में ईर्ष्या का भाव चल रहा है, अगर तो मानिएगा कि हमारे ज्ञान को हम अपने हाथ से खुद ढक रहे हैं, अपने अज्ञान का इजाफा हम खुद अपने हाथ से बढ़ा रहे हैं। कुछ भी नहीं देख आ रहा है तो नहीं किया मैंने, मैं तो धर्म समय बढ़िया बैठा था, मैं तो सुनने गया था ज्ञान की बातें लेकिन मेरा अज्ञान और बढ़ गया, बढ़ेगा कैसे, नहीं क्योंकि भाव दशा तो उस ज्ञान की कथा के समय ज्ञान की कथा करने वाले से और उस सच्चे ज्ञान से आपके मन में ईर्ष्या का भाव।